Seguiré creciendo. जिस हम लोग अंधकार में थे वैसे ही अंधकार में बने रहो, इसका कारण क्या है? गले तक भरी पड़ी है जिसमें वो बातें उतारती हैं। जैसे चेतन ने चेतन उसमें कह दिया ना, बिना गति सुनी के भजने बड़स किलो सा कृष्ण भजने मोर बड़स किलो सा आपके ना गति श्लोके लगे गए होता। वैसे ही हम लोगों ने यहाँ तक कि माता को छोड़ दिया, छोड़ दिया, पिता को भी छोड़ दिया, रुपया पैसा छोड़ दिया, किंतु क्रोध नहीं छूटता, क्रोध नहीं छूटता, और छोटी छोटी बातों से जब क्रोध ही नहीं छूटता तो शास्त्रों में क्रोध की पहली प्रशंसा है। ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसने क्रोध को खराब नहीं बदला है, और ऐसा कौन सा महापुरुष महात्मा है जो क्रोध को पूरा नहीं बदलाया, और फिर इसी बीज को हृदय में रोपण कर इसमें पानी देकर के इसमें फलित फुलित करके अब बट वृक्ष जैसा हम बना लेते हैं उस क्रोध को, तो फिर उसके नीचे कोमल भक्ति का भी अंकुरित होगा, रस को ले लेगा कौन? क्रोध को कैसा कहा बतलाया गया? और ये यदि क्रोध अच्छी बात होती तो क्रोध को उत्पन्न करने के लिए हम लोग साधन बने करते, और क्रोध यदि बुरी बात है तो इसको छोड़ने की चेष्टा करें, किंतु इसको छोड़ने के लिए हम लोग क्या चेष्टा कर रहे हैं? करते हैं कुछ। क्रोध है एक काम है एक क्रोध है एक रजोगुण समुद्भव क्रोधा
बुद्धि
मृत्युभ्रंशात
बुद्धिनाश बुद्धिनाश
रोज रोज हम पाठ करते हैं जाता है। हमारे मठ में एक सन्यासी थे, हमको पाठ करना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आज का विषय है, किंतु इम्पोर्टेंट विषय देखते हैं पर जो दुख होता है जो कोई इस बात को ले नहीं पाता है जो हम करते हैं, गदगद क्रोध काम लोग ये सब भरा पड़ा है, वो असल चीज को लेता ही नहीं है, वो भी तक पहुंचता नहीं, तो हम जो कुछ कहते हैं वो क्या होता है? सब मरुभूमि में जाकर विलीन हो जाता है। सब यदि कृषक सारा जीवन परिश्रम करें और एक उसको बीज न मिले तो उसको बड़ा आनंद होगा ना, हताश हो जाता है। इसलिए वनस्पति इसको याद रखना चाहिए। क्रोध केवल एक ही दशा में एक ऐसी है जहां पर कि वो लाभदायक
है,
विद्वेषी जने कृष्ण का विद्वेषी यदि हो तो उस पर क्रोध करने से कुछ लाभ है, और इसके लिए शास्त्रों में कुछ सहजता दिया गया है मध्यम अधिकारियों के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए नहीं। क्यों? वो भी समझता है कि ये परोक्ष रूप में भगवान की सेवा करता है, इसलिए उसको क्रोध होगा ही नहीं। तो मध्यम अधिकारियों को हो सकता है उसके लिए ये हमने उसके लिए किंतु और किसी भी दशा में क्रोध हुआ तो हमारे आश्रम में चुचुड़ा में हमने देखा कि एक पूज्यपाद आश्रम महाराज थे, प्रभुपाद ने उनको संन्यास किया। हमारे सामने बूढ़े थे, बूढ़े थे, दुबले पतले, बड़े भजन थे और साहित्यिक थे, लेखक थे, भक्ति तो वो बड़े देवदार आदमी थे। तो नरसिंह महाराज जी और सब जितने हैं उनके पीछे लगते थे, तो वो पीछे लगते थे तो वो ऐसा करते थे जैसे ये लोग। तो वो ओल नहीं खाते थे, ओल जानता है
जिनकम,
जिनकम ओल कड़वा होता है, जीभ में काट देता है, खा हो जाएगा, इसलिए उसमें तेतू इमली या कोई मान नहीं, ओल तुम्हारी रुचि बैकुंठ में नहीं है। तो यहाँ से थोड़ी दूर पर बैकुंठ से अयोध्यापुरी और यहाँ से दूर, किंतु रास्ता एक ही है, रास्ता दो नहीं है, इसलिए तुमको अयोध्यापुरी के मार्ग से ही तुम्हारे इष्ट देव के यहाँ जाना पड़ेगा। तो तुम जब जाएगा थोड़ी दूर पर तो अयोध्यापति रामचंद्र मिलेंगे और वहां से बहुत दूर ही द्वारावती जो मथुरा के समान ही है वहां वो मिलेंगे। अयोध्या में तुम अधिक मत ठहरना, इसलिए ठहरना तुमको वहां से सुखपूर्वक द्वारकापुरी में जा सको, बस किसी संधान के लिए, अनुसंधान के लिए तुम कहा। तुम जगुपति के अत्यंत प्रिय हो इसलिए तुम द्वारका जाओ और अपने प्रिय देवता का साक्षात करो। यहां पर कहना नहीं है कि अब इष्ट देव को दर्शन करना है तो उसका कुछ उपाय होता है, उपेय को पाने के लिए उपाय होता है, एक होता है साधन, एक साधु, साधु को पाने के लिए साधन की जरूरत, ये साधन अनुभवी गुरु बतला सकता है, दूसरा कोई नहीं बतला सकता। रियलाइज सो कैन So how we can have our sadhu and what is sadhu? दूसरा कोई ये बदला नहीं। तो नारायण जी यहाँ पर गुरु के रूप में बतला रहे हैं, अपने अनुभवों को बतला रहे हैं। मैंने कल बतला परसों बतलाया था जो बैकुंठ से निकट है अयोध्या और दूर है द्वारका है, द्वार गोलोक बैठ गोलोक ब्रज का, द्वारावती मैंने क्या गेट, प्रवेश करने के लिए दरवाजा है, वृंदावन जाने के लिए मथुरा जाने के लिए जब तक कि द्वारका में प्रवेश नहीं होगा तब तक वहां नहीं जाए। ब्रज में शुद्ध माधुर्य है, वहां माधुर्य है किंतु थोड़ा स्वर्ग मिला हुआ है, तो ऐश्वर्य के माध्यम से ऐश्वर्य से तो तुम बैकुंठ से जा रहे हो, तो वहां तुमको जाना आवश्यक है और वहां जाने के लिए तुमको यहां पर भी जाना है, अयोध्या के माध्यम से ही तुमको जाना पड़ेगा और रास्ता कोई है नहीं। तो कह रहे हैं मथुरापुरी जैसी द्वारा होती है। जैसी मैंने कहा, अरे जादव यहाँ है वहां पर भी जादव, यहाँ के जो पुरोहित लोग हैं वहीं पर वहां, दोनों एक ही समान है। वर्णन भी शास्त्रों में ऐसा किया गया है ये उसी के समान ही है। यहाँ के जितने भाव हैं, जैसे जब देवी वसुदेव को अपना पिता माता मानते हैं कृष्ण, तो द्वारकापुरी में मानते हैं कि नहीं? द्वारकापुरी में भी वही मानते हैं माता पिता। बलदेव जी भैया है वहां पर भी भैया, किंतु थोड़ा सा ये है कि वहां पर और कुछ बढ़ गए हैं, पुत्र हो गए हैं, नाती हो गए हैं, विवाह हो गया है सबका। यहाँ पर ये अभी नहीं हुआ था, वहां पर ये सब और बढ़ गया है परिवार का, यहाँ पर परिवार, किंतु भावनाएं सब वही, इसलिए जैसा कहा गया। और अयोध्या कैसा है? बैकुंठ जैसा है। बैकुंठ में और इसमें करीब करीब निकट है। क्यों निकट है? यहाँ पर दास्य है, यहाँ पर भी दास्य है। रामचंद्र की लीला में भी दास्य भाव है, किंतु दास्य होने पर भी कुछ वैशिष्ट्य है, किंतु है तो दास्य, केवल बीच में एक प्रकोष्ठ है, एक प्राचीर है, दीवार है। वो दीवार किस चीज की है? पतली सी दीवार है ऐश्वर्य की। यहाँ पर अधिक ऐश्वर्य है, वहां थोड़ा कम है, किंतु दोनों ही दास्य प्रधान। इनके दास्य में कुछ विचित्रता है, प्रेम जरा कुछ अधिक है और वहां पर प्रेम जरा कम है। वो मुक्ति से लगा हुआ होने के लिए वहां पर प्रेम सेवा उत्तरा नहीं है, स्वसुख प्रशांत है, सुख ऐश्वर्य उत्तर है। नारायण को देख करके लोग भक्त लोगों को आनंद होता है, नारायण को आनंद होता है कि नहीं ये ठीक नहीं, किंतु जितने भी भक्त हैं उनको नारायण को देख करके उन लोगों को आनंद होता है, किंतु होना क्या चाहिए प्रेम में? हमें देख करके प्रभु को आनंद है तब तक तो वो भक्ति है, और उनको देख करके हमको आनंद होता है तो अभी ये स्वसुख ऐश्वर्य उत्तरा है, प्रेम सेवा उत्तरा नहीं। वहां पर दास है, वहां पर भी दास है, किंतु यहाँ के दासों में प्रेम की कुछ कमी है। जैसे हाथ जोड़ करके लोग खड़े रहे वो ऐसे अभय थे, और वहां गरुड़ जी यहां होंगे, गरुड़ जी बैठे रहेंगे, प्रभु बुलाएंगे, यदि कहीं जाना हुआ टहलने के लिए तो उनको बुला लिया, तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना इत्यादि सब करेंगे। कभी कभी गरुड़ ने जो उनके पार्षद हैं नारायण के, और हनुमान जी रामचंद्र जी के पार्षद हैं जो अयोध्या में रहते हैं, दोनों में अंतर थोड़ा सा बदला है, इससे आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। क्या अंतर? नारद जी गरुड़ के इनके भी प्रिय हैं, नारायण के भी और राम के भी रसिक हैं, दोनों जगह का अनुभव है ना? और गरुड़ जी को केवल बैकुंठ का ही अधिक अनुभव है, वहां का अनुभव नहीं है ना? और हनुमान जी को बैकुंठ का अनुभव कम है, अयोध्या का अनुभव है। एक ही चीज तभी वो कुछ वैशिष्ट बदला है। रामचंद्र जी को इंद्र जी ने
नागपात से बांध,
नागपात नाग माने सर्प, सर्पों के पास से बांध करके एकदम उनको और लक्ष्मण दोनों को गिरा दिया, और ऐसे जोर से कसा कि दोनों बेहोश जैसे हैं। चोट आने पर भी अपने को छुड़ा न सके, उनके लिए ये वरदान किस किसी को भी लाभ पास न करने पर। नारद जी उस समय में बाई चांस रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए लंका में आए और देखा जैसा बंदर भालू रो रहे हैं और राम और लक्ष्मण जी विवश पड़े हैं। जब गरुड़ के पास में पहुंच गए, गरुड़ जी रामचंद्र जी को आपके प्रभु ही है, वो राम रूप में वहां गए हैं नारायण जी, तो उनको नागपाशु में से बांध दिया गया है, तक नहीं हो रहे हैं, आप पहुंची है, आपके पहुंचते ही आप लोग दस से मारे ये लोग छोड़ करके भाग गए और वो बंधन से छुटकारा पा गए। सोचे जी हमारे प्रभु वहां पर गए हैं तो लोग दर्शन ही गए हैं, तो वहां पर पहुंचे और देखा जो विवश पड़े हुए हैं और रामचंद्र जी भी विवश हो रहे हैं, लक्ष्मण जी भी विवश हो रहे हैं, आंखें जब दबाई हुई है, नबीला कर रहे हैं जैसे आदमी विवश हो गया था, चेष्टा शून्य है। ये वहां पर उपस्थित हुए, इनको देखते ही गरुड़ सातों में देखा जी गरुड़ ही आ गए, अब एक एक करके खा जाएंगे हमें, जब देखा तब इनके गंध से ही सब छोड़ करके खा गए, भाग्य से इसे मन में हुआ। अरे हमारे प्रभु तो बड़े विचित्र हैं, सबंतर ज्ञानी हैं, सब शक्तिमान हैं और इनके चारों तरफ में सर्पों ने लपेट लिया, बांध लिया, सब जैसे साधा और हमको देख करके हमारे गंध से ही बन गए, तो फिर ये सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान रहेगा, ये तो साधारण हम सुना, हमारे प्रभु नारायण जी तो ऐसे नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु और इनके तो चार हाथ हैं और इनके दो हाथ, हम चक्र गदा पद्म लेते हैं, उनको तो कोई लड़ाई में हरा ही नहीं सकता, ये प्रभु हैं कि नहीं है उनको ये हो गया संदेह और संदेहात्मा गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति किसी को यदि संदेह हो जाए तो परमात्मा राज्य से ठीक होना हो जाए। अंत में इस बात को पूछने के लिए शंकर जी के यहाँ गए, शंकर ने कहा ओ इसको संदेह हो गया है भगवत चरित्र में, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे फुर्सत नहीं है, मैं काम में जा रहा हूं। पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम नहीं कुछ जानते हैं, तुम शंकर के पास में जाओ। शंकर जी ने कहा कि भाई हमको फुर्सत नहीं है, अभी यदि भगवान के तत्व में किसी को संदेह हो जाए तो मुक्त पुरुष तो उसको अपने संग के प्रभाव से हरि कथा से दूर कर सकता है, साधारण आदमी उसका संग करेंगे उसको भी संदेह हो जाएगा, उस दोनों आदमी जाएंगे, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। शंकर ने कहा ऐसे लोगों का संग नहीं करना, दूर संग जाएगा, अथवा उनके अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि खग जाने खगई का भाषा, उसी से इसको दूर करना चाहिए। ये राजा होकर के ही अपने प्रजा के पास में जाकर के दिनहीन होकर के आत्मसमर्पण करें और सफल नहीं जा सकते, इसका कल्याण इसलिए भेज दिया तो वहां गए और कुछ दिन रह करके उनको सबको प्रदेश और रामायण की समस्त बातें जब कही तब संदेश उनको तब संदेश तब उनकी महिमा को समझा कि हाँ ये नारायण ही हैं। और हनुमान जी जब अहिरावण उनको ले गया तो चले गए छोटा देश बना करके, उनको रामचरित्र में कहीं भी कोई संदेह न था और ऐसी कोई सेवा नहीं जो किया और उनको साधारण नर मान करके ही किया, कभी उनको भगवान के रूप में ग्रहण ही नहीं किया, कभी नहीं ग्रहण किया, बस यही किंतु जानते हैं ये भगवान है, हृदय से जानते हैं किंतु सेवा करते हैं, क्योंकि ऐसा भाव तो रहेगा ना वहां, किंतु भगवत बुद्धि रहेगी उनकी, किंतु फिर भी नर लीला के अनुसार में उनको संदेह कभी नहीं होगा उनके चरित्र पर और उनकी यथावत सब सेवा करेंगे, मनुष्य लीला के अनुरूप उनकी सेवा में सहायता करेंगे, गरुड़ इत्यादि के द्वारा ऐसा नहीं होगा। नारद जी सब कुछ जानते हुए भी हनुमान जी जैसी सेवा नहीं करेंगे। कविता पाठ गान और ये सब के द्वारा करेंगे। कभी राम कहे प्रभु बड़े दयालु आप हैं, आज का आपका पैर में ही तेल लगाऊं और पाद संवाहन करूंगा, रामचंद्र देंगे और ये कहेंगे देंगे। क्यों यहाँ पर इसी प्रकार कुछ अभिमान आता है, यदि करना पड़ेगा तो वैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी संकल्प होकर कभी बंदर बन करके निम्न श्रेणी में आकर के उनकी सेवा को, यदि सेवा करना है तो अभिमान को छोड़कर के दीन होकर के नीचे आना पड़ेगा, तब सेवा मिलेगी। बड़ा बन करके कोई सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए यद्यपि अयोध्या बैकुंठ के निकट है तो भी एक बीच में दीवार है, जिस दीवार के वजह से ये निकट रहने पर भी दीवार के वजह से थोड़ी सी दूर है, उसमें पाप सकते हैं दोनों में है। कहते हैं कि देखो यदि अयोध्या के बिना जाए होगा नहीं, अयोध्या जाने और अयोध्या जाने का तरीका यह है कि यद्यपि गोपाल मंत्र से यह सिद्ध हो सकता था किंतु गोपाल मंत्र का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, अपना काम बनाने की जरूरत है, जिससे हमारा काम बन जाए। अपने साधन को गुप्त रखो, गोपनीय नहीं रहने से तो चारों तरफ में ये फैल जाएगा तो सिद्धि होगी नहीं, इसलिए गोपनीय। किंतु गोपनीय गुरु से भी गोपनीय रखेगा, जैसे सती जी ने गोपनीय रखा, झूठ बोल दिया और अभिता ने एक संदेह रख लिया हो गया उनका, ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि तुम को कार्य करना है, जिसे कार्य की स्थिति है, इसलिए तुम हे सीतापते, हे रघुनाथ, हे दशरथ नंदन, हे सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी, हे लक्ष्मण श्रेष्ठ, हे हनुमत प्रिय, हे सीतापते, हे सियाराम, इत्यादि आप इसी नामों का कीर्तन करते हुए और उन्हीं का कीर्तन जोर से करते हुए और प्रतिष्ठा लें नहीं जाए, ऐसा नहीं करेगा तो नहीं पहुंच सकता है। क्यों? वहां पर रक्षक कौन है? वो बंदर सब हैं, बंदर जाने नहीं देंगे तुमको। और यदि यहां रामचंद्र जी का नाम सुना, तुम्हारे लिए अपने पलक पावड़े दिखा देंगे, बड़े आदर करके तुम्हें ले जाएंगे। और यदि तुमने कहा कहीं कीर्तन कर रहे थे क्या,
गोपाल हरे
गोपाल हरे करेगा तो वहां नहीं घूसने देंगे, इसलिए मत करो। यहाँ पर यही सब नाम करना, क्या सीतापते श्री रघुनाथ लक्ष्मण ज्येष्ठ प्रभो हनुमत प्रियवर इत्यादि कीर्तय वेद शास्त्र संस्मरण सदगुण रूप वैभवन, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करके वैभव नामों का और कीर्तन करते स्मरण क्या करो, क्या रामचंद्र जी के गुणों का, बड़े विनयी हैं रामचंद्र जी होकर के भी कैसे थे विनय, विद्या ददाति विनयम, विद्या पढ़ लिया पूरा पंडित हो गए, सब पोथी पढ़ डाली और विनय नहीं हुआ स्टेडियम से देखे तो पांडित के कहा पांडित सकी की परीक्षा इसमें है जो विनय, और विनय क्या कहता है दादा की पात्रता, उसे पात्रता प्रदान करती है किस चीज के लिए, जिस चीज को वो लाभ करना चाहता है। इसलिए भाई विद्या मैंने ही विनय, तो विद्या पर सकती हम लोग कोई हमसे साधारण भी व्यक्ति आए इसलिए आए हैं बताइए विराजमान हुए सुशोभित आसन को शोभन दीजिए कहाँ से पढ़ा रहे हैं बड़े दिने के साथ में संभाषण का कहाँ से आया है इसलिए आया महाराज जी से भेंट नहीं हो सकती है यू कैन स्मिथ महाराज रूढ़ भाषा का प्रयोग मत करो विशेष करके मठ मंदिरों में बड़ी नम्रता के साथ में हम लोगों को दूसरों को सम्मान देते हैं नहीं भाई यहाँ पर जगह ही नहीं है उनका तो सात दिन जीवा सिर रगड़ेगा तो भी जगह नहीं मिलेगी जगह ही नहीं है इसी तरह से गुरुजनों के साथ में लंग ना यही सफलता है और यही बुद्धिमत्ता है और जत्र अस्य बंधु अपि भवेत् क्रिय क्रिय प्रीति पा तत्र तदैतने और जो काम हम कर न सके अब भी न पैदा कर लिया हम नहीं करेंगे तो उपास को पहुंच वही सबसे बड़ी मूर्खता है अपने काम को निकाल लेना चला के चतुराई से ये बुद्धिमत्ता है और काम को बिगाड़ दिया तो ये मूर्खता है हमको तो काम बनाना है ना तो इसी के लिए ये कह रहे हैं बहुत ये गंभीर विषय है इसको समझो तुम लोग जब उन्होंने कहा कि सीतापति रामचंद्र जानकी जीवन सीता बल्लभ इत्यादि नाम लो कहे प्रभो ये हमसे नहीं होगा इसमें हमारी एकांतिकता नष्ट हो जाएगी आई कैन टेल राम ना सीतापति हनुमत कार्य अर्थात बुद्धिमत्ता है और मूर्खता की क्या है कार्य भ्रम से ही ना मूर्खता जीत पर अर्थ और कार्य को ध्वंस कर दिया और इष्ट की प्राप्ति हुई नहीं ये तो मूर्खता रही है अब जैसे देखो जाप ग्राम जावत जावत इज ए प्लेस यू नो जावत ग्राम बरसाने वाले महाराज दिलीबान महाराज जी ने बहुत बड़ा भारी भवन बना दिया राधा जी निकल नहीं सकती घर से चारों तरफ से बैन लगा दिया कि गिवन बैन सो दैट श्रीमती राधा कैन कम आउट ऑफ हिज हाउस तो उन्होंने जाकर के उससे कहा कि देखो तुम्हारी बहू जब इस सूर्य की पूजा करेगी तो करोड़ों गायें हो जाएंगी और तुम्हारा पति का भला होगा और कल्याण होगा धन धन से संपन्न हो जाएगा तो मेरी बहू तू शुद्धि की पूजा करना तो मैं नहीं भाग जाऊंगी घर से नहीं बेटी ऐसा मत कर सुंदर सुंदर फूलों उपकरणों से फूल ले आना हार गूंथना और रसोई में अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाना और शुद्ध जी की पूजा कराना देखिए तुम इसे लिए घर से निकलो और कोई जरूरत नहीं है बहुत जब मनाया तब ये मान और वो भी पूर्णिमा जी आकर के कही राधा जी से बेटी तुम हमारी बात मान करके तुम करो तो ये तो चाहती थी अच्छा सूर्य पूजा के लिए अब वो सचमुच में सूर्य पूजा के लिए गई थी और सूर्य पूजा किया वो चतुर थी उनसे बढ़कर के और कोई चतुर हो सकता है कोई भी चतुर नहीं अब वहां जाते हैं जाती हैं फूल चुनने जाती हैं कहाँ जा रही है फूल के लिए फूल चुन करके लाते हैं फूल चुनने में क्या होता है कृष्ण से मिलन अच्छे गजरे गुथती हैं अरे किस लिए ये बना रही है तुम्हें तो कहा कि सूर्य के लिए पूजा के लिए ये बनना तो इसीलिए माला गूंथन करती है मिठाई बना रही है लड्डू मोटी चूट
मनोहर मनोहर लड्डू
का मनोहर लड्डू का और ये सब किस लिए तो सूर्य पूजा करना है ठीक कोई मना नहीं है तो ये कर रही अच्छा पूजा करने के लिए गई पूजा में पुरोहित मिल गए अंडरस्टैंडिंग श्रीमती राज का बोल तू इदं एतत् पुष्पमाल्यं मम सर्वस्वं अर्पयामि शुभम अर्पयामि ओम मित्राय हे मित्र आपके लिए मैं पुष्पमाल्य और पुष्पांजलि हृदय को और हृदय के सब कुछ को आपके चरणों में हे मित्र अर्पण कर ओम मित्राय ओम दस द्वादश कलात्मने मित्राय नमः यहाँ पर द्वादश कलात्मने मैंने द्वादश